नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखते हुए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह की और बाबा फतेह सिंह जी के अनुकरणीय साहस और बलिदान का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल तथा कला के क्षेत्र में दिए गए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी। रविवार को राष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। अगले दिन वे जमशेदपुर में ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वे एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। गृहमंत्री ने कहा कि ये वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के दृष्टिकोण के तहत उभरते खतरों से निपटने का एक मंच बन गया है। भारत ने अमेरिका द्वारा H-1B वीजा प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि सरकार को ऐसे भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन में अमरीकी अधिकारियों से इस बारे में बात की है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रवक्ता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है।
हाल ही में हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा बताकर इस दरकिनार नहीं किया जा सकता।
बांग्लादेश में आगामी चुनावों पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और सहभागी चुनावों का समर्थन करता है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता दोगुना करने की योजना बनाई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल और पुरी शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबंधकों से अपने मंडलों में रेल संचालन क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4 अरब 30 करोड़ बढ़कर 693 अरब 30 करोड़ हो गया। सोने का भंडार 2 अरब 60 करोड़ बढ़कर 110 अरब 30 करोड़ पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक की स्थिति भी 950 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 78 करोड़ हो गई है और विशेष आहरण अधिकार 80 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 74 करोड़ हो गया है। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है और 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।